हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनय के सवाल सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया, लेकिन सुनैना का चेहरा उसके सामने आते ही वो बोला, सोना, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी सोना है, और मुझे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वहाँ हॉस्पिटल में वो अकेली है, और पता है, वो मेरे बारे में पूछ रही है। इसका मतलब उसे सब कुछ याद आ गया है। मैं अभी उससे मिलने जाना चाहता हूँ, अभी। आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए अनय बोला, हाँ तो ठीक है, तू जा यार, मैं हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा विराज के बारे में तो मैं तुझे कॉल करके बता दूंगा, और तब तक तुम अपने मन में ये क्लियर कर लो कि तुझे आखिर उसके साथ क्या करना है। आदित्य थोड़ा परेशान होते हुए उसे मना करता हुआ बोला, तुम्हें यहाँ पर अकेले रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उस औरत का क्या भरोसा, कहीं उसने तुम्हारे साथ भी कुछ। अनय ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का मुस्कराते हुए कहा, नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और मैं तो वैसे भी उसके साथ अकेले ही रहता हूँ इतने महीनों से, और अगर तुम्हें मनस्वी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था तो फिर तुम उससे मिलने यहाँ पर क्यों आए। अनय के इस सवाल पर आदित्य ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर उसमें कुछ दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये मैसेज सेंड किया था उसने मुझे, और साथ में ये फ़ोटो भी। आदित्य की मोबाइल स्क्रीन पर वो तस्वीर देखते हुए अनय एकदम सीरियस आवाज में बोला, अच्छा, तो सच में विराज अब उसके पास है, और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं आदित्य, रहने दो तुम, अब जाने दो विराज को। मुझे लगता है वो अब सुनैना के पीछे नहीं आएगा, उसे तुमने अच्छा सबक सिखाया है। देखो, उसकी हालत इतनी खराब लग रही है इन तस्वीरों में। अनय की बात पर आदित्य ने सवाल किया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से पहले जैसी कोई हरकत नहीं करेगा? अनय ने उसे समझाते हुए कहा, यार देख, 100% गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन यार तू अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, और भाभी को कहीं भी अकेले मत भेजना कुछ दिनों के लिए, और जब तक मैं अपनी तरफ से भी मेक श्योर करूंगा कि वो ऐसा कोई कदम ना उठा पाए, और इस बारे में मुझे अभी मनस्वी से भी बात करनी है, देखता हूँ आखिर वो क्या चाहती है। अनय की आखिरी बात सुनकर आदित्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, उसके चाहने से क्या होता है, मैं कोई उसका ऑर्डर सुनने वाला गुलाम नहीं हूँ जो मैं उसके हिसाब से अपने सारे काम करूँगा, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए अनय, और जो भी हेल्प और उसके जो भी एहसान है तुम्हारे ऊपर, मैं वो सब कुछ चुका सकता हूँ तुम्हारे लिए, और फिर तुम आज़ाद हो सकते हो उसके साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते से। अनय जानबूझकर बात बदलते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम्हें हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, और पहले जाकर देखो भाभी की हालत कैसी है अब। अनय ने आदित्य को ये बात याद दिलाई। आदित्य ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़कर नदीम की तरफ देखा, जो थोड़ी दूर पर उसका इंतजार करते हुए वहां पर खड़ा था। फिर वो अनय के गले लगा और कुछ देर में ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनय कुछ देर तक आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता हुआ वहां पर ही खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे अपने आंसू पोंछती हुई मनस्वी नजर आई। वो बहुत ही मायूसी से उसकी तरफ देख रही थी, उसने शायद उनकी कुछ बातें भी सुन ली थी और तब से वो वहां पर ही खड़ी हुई थी। शायद वो चाहती थी कि अनय को उसके बारे में पता चल जाए, और इसीलिए वो अब तक वहां पर रुकी थी। लेकिन जैसे ही अनय ने उसकी तरफ देखा वो तेज कदमों से वहां से एक तरफ भाग गई, और वो अब रो रही थी। उसे रोते देख अनय को पता नहीं क्यों अपने दिल में कुछ चुपता हुआ सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके इन सारे आंसुओं की वजह वही है, और आज उसने जो कुछ भी बोला उन शब्दों ने जाने अनजाने कहीं ना कहीं तो मनस्वी को चोट पहुंचाई ही है। अनय ये सब सोचते हुए तुरंत ही उसके पीछे आया। वो काफी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी उसे कुछ बातें तो करनी ही है मनस्वी से, इसीलिए वो उसके पीछे आ रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि मनस्वी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, तो अनय लगभग दौड़ते हुए उसके रास्ते में आ गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, कहाँ भाग रही हो अब ऐसे मुंह छुपाकर, और ये रो क्यों रही हो, ऐसा भी क्या बुरा लग गया, सब सच ही तो कहा ना मैंने। मनस्वी ने आंसू भरी लाल आंखों से गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी मर्जी है हंसू या रो, तुम कौन होते हो कुछ भी पूछने वाले, और जब सच बोल ही दिया तो फिर यहाँ सफाई देने के लिए क्यों आए हो। अनय भी उस पर पूरा हक जताते हुए पूछता है, मैं सफाई देने नहीं, सफाई मांगने आया हूँ, तुम बताओ जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम क्या सफाई दोगी मुझे, है कोई सॉलिड रीजन तुम्हारे पास तुम्हारे भाई विराज का साथ देने के लिए और मुझसे ये सारी बातें छुपाने के लिए। मनस्वी ने उसकी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी सफाई नहीं देनी है, क्योंकि तुम तो पहले ही मुझे सर्टिफिकेट दे चुके हो ना, मैं कितनी बुरी धोखेबाज इंसान हूँ जो तुम पर विश्वास नहीं करती और हर बात हमेशा तुमसे छुपाती हूँ, तो फिर क्यों मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक्सप्लेन करूँ, तुम बस उसे भी सुन लोगे लेकिन मानोगे नहीं, और मैं अब तुम्हें किसी बात पर यकीन दिलाना भी नहीं चाहती हूँ। ये सारी बातें बोलते हुए और शिकायतें करते हुए मनस्वी का चेहरा दूसरी तरफ था, तो अनय ने भी थोड़ा सा आगे आकर उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए पूछा, अच्छा, तो पहले यकीन दिलाना चाहती थी क्या किसी बात पर। और मैंने तुमसे कहा ना, सिर्फ बातों से कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। जब करके दिखाने का वक्त होता है तब तुम कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं दिखाती, और अगर ऐसा होता ना तो तुम आदित्य से पहले मुझे इस बारे में बताती। उसे इस तरह से सीक्रेटली यहाँ पर मिलने के लिए तो ना बुलाती, और चाहे जितनी भी सफाई दे लो, लेकिन सच तो यही है ना, तुम कर तो ये सब उस विराज को बचाने के लिए ही रही हो ना। अनई जो कुछ भी बोल रहा है वो पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन वो पूरा गलत भी नहीं है, और मनस्वी इतनी तो समझदार है कि उसे उसकी ये ताने भरी बातें समझ आ रही हैं। जिस तरह से उसकी बातों का मनस्वी को बुरा लगा है, उसी तरह अनई को भी मनस्वी के कुछ एक्शंस को लेकर बुरा लगा है, और सबसे बड़ी बात, वो उसे क्यों कुछ भी नहीं बताती, जबकि अब चीजें पहले जैसी नहीं है उन दोनों के बीच। इस बारे में सोचते हुए मनस्वी चुपचाप वहां पर उसके सामने खड़ी हुई है। उसने अपनी आंसू भरी आंखों की पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा तो अनई अभी भी अपने जवाब के इंतजार में उसकी तरफ ही देख रहा है। मनस्वी को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर अनई ने बहुत ही बेलुखी से पूछा, क्या देख रही हो आप, बोलो, जो कुछ भी मैंने पूछा जवाब दो उन सबका। नहीं है ना कोई जवाब, और होगा भी कैसे, क्योंकि ये जो भी हो रहा है इन सब में गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मनस्वी पहले से ही अपने आप को कसूरवार मान रही है। इस बारे में सोचते हुए वो काफी गिल्ट में भी है, लेकिन ऊपर से जब अनई ने सारा इल्जाम ही उस पर लगाने की कोशिश की तो उसे काफी गुस्सा आ गया।
मनस्वी ने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धक्का मारते हुए कहा, क्या गलती है मेरी, ये कि मैं तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ने देना चाहती हूँ, या फिर ये कि आदित्य को किसी भी तरह के लीगल इश्यूज और पुलिस के चक्कर में पड़ने से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता, मिस्टर सहगल अंकल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे इस बारे में हेल्प मांगी, और वो तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना किया, और फिर विराज को ढूंढने के लिए काम पर लग गई। तुम्हें पता है, अगर बात सिर्फ विराज तक होती तो शायद मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कल जब विराज की माँ को उस जगह के बारे में पता चला और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो पता है तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त ने क्या किया, उसने विराज के साथ उनकी मॉम को भी वहाँ पर बांध कर रख लिया। अनय आँखें और मुँह पूरी तरह से खोलकर मनस्वी की ये सारी बातें सुन रहा है, और मामला यहाँ तक पहुँच गया होगा इस बारे में तो शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था। इतनी देर आदित्य से बात करने के बाद आदित्य ने भी उसे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, और शायद उसने इतना डिटेल में पूछा भी नहीं। अनय को हैरान सामने खड़े देखकर मनस्वी ने आगे बोलना जारी रखा, वो तो अच्छा है मेरे लोग आज सुबह ही वहां तक पहुंच गए हैं और हमने उन्हें रेस्क्यू कर लिया, नहीं तो तुम्हारा सनकी दोस्त, पता नहीं क्या इरादा था उसका, कब तक उन लोगों को ऐसे ही भूखे प्यासे बांध कर रखने का। अनय ने उसे बीच में टोकते हुए सवाल किया, एक मिनट, ये उसकी मम्मी कहाँ से आ गई बीच में, और तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मेरा मतलब है आदित्य से तुमने पूछा इस बारे में, उसने क्या कहा था, और फोटो तो तुमने उसको सिर्फ विराज का ही भेजा था। मनस्वी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आंटी को मैंने समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया है, क्योंकि अंकल उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन घर में तुम्हें क्यों ये सब बता रही हूँ, तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होने वाला ना, और रहने दो, ठीक ही कह रहा था तुम्हारा दोस्त, तुम्हें आज़ाद हो जाना चाहिए जबरदस्ती के रिश्ते से और मुझसे भी। ये सारी बातें बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है, और ये सब कुछ बोलने का दर्द भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। वो ये कहना नहीं चाहती, लेकिन उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ है, और जो दर्द वो महसूस कर रही है कहीं ना कहीं वो उसका एहसास अनय को भी कराना चाहती है, इसीलिए इतनी बेरुखी से उसने ये सारे लफ्ज बोले। उसकी ऐसी बातें कहीं ना कहीं तो अनय को बुरी भी जरूर लगी हैं, लेकिन अभी वो सामने से ये बात बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उस बात को इग्नोर करते हुए वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोला, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, और हमारा रिश्ता वो क्यों ला रही हो अब बीच में तुम। इस पर मनस्वी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही मजबूती से कहा, हमारा रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम हमारे बीच में लेकर आए हो, वो भी इन सारी बातों के बीच, और वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने दोस्त पर भरोसा है, तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ मेरे साथ, क्यों कर रहे हो मुझसे ये सारे सवाल, मैं तो बुरी और गलत ही हूं ना तुम्हारी नजरों में, तो बस वही समझो तुम, आज हमारा जो भी रिश्ता था।